कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहां एक क्रूर महाशक्ति आपके छोटे से देश को कुचलने के लिए सीमाओं पर खड़ी है।
खौफ का माहौल है।
बिल्कुल। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि कोई ईश्वरीय संदेशवाहक आए और आपको सांत्वना दे, ढांढस बंधाए। लेकिन जब आपका सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता आखिरकार मुंह खोलता है, तो वो आपको सांत्वना देने के बजाय आपको एक बेवकूफ गधा कहता है।
और सिर्फ गधा ही नहीं, बल्कि ये भी कहता है कि एक जानवर भी आपसे ज्यादा समझदार है। मतलब ये तो निश्चित रूप से वो बात नहीं है जो कोई भी संकट के समय सुनना चाहेगा।
हाँ, ये एक ऐसा झटका है जो आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आज की हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही खंगालने वाले हैं।
एकदम सही कहा आपने। हमारे पास डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड के एक क्लास सत्र का ट्रांसक्रिप्ट है, जहां उन्होंने प्राचीन बाइबल के ग्रंथ यशाया यानी आयजाया के पहले अध्याय की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की है।
राइट। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये किताब आज भी मानव स्वभाव की इतनी गहरी और असहज करने वाली सच्चाई कैसे बयां करती है।
हम ये भी डिकोड करेंगे कि यशाया को भविष्यद्वक्ताओं का राजकुमार क्यों माना जाता है और कैसे इसके सिर्फ पहले अध्याय में विद्रोह, खोखले कर्मकांडों और न्याय के जरिए शुद्धिकरण का पूरा खाका खींच दिया गया है।
तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। डॉक्टर ऑसवाल्ड एक बहुत ही दिलचस्प दावा करते हैं। वे कहते हैं कि यशाया पुराने नियम में थियोलॉजी का सबसे संपूर्ण संग्रह है।
हाँ, इसे पूरी बाइबल का एक माइक्रोकॉस्म या सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है।
मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि अगर आप पूरी बाइबल की बाकी 64 किताबें हटा भी दें, तो भी अकेले यशाया में आपको पूरा सार मिल जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा कैसे संभव है, एक ही किताब में इतना कुछ?
देखिए, इसे इस तरह से समझिए, बाइबल मुख्य रूप से दो बड़े विषयों पर टिकी है। पहला है न्याय, ईश्वर के कठोर नियम और उनकी पवित्रता,
जो कि पुराने नियम का मुख्य स्वर है। राइट।
बिल्कुल। और दूसरा है करुणा, छुटकारा और बिना शर्त प्रेम, जो नए नियम का आधार है। अक्सर लोग इन दोनों को अलग अलग खानों में रखते हैं।
जैसे कि न्याय और प्रेम एक साथ नहीं हो सकते।
वही तो, लेकिन यशाया इन दोनों को एक ही जगह एक साथ खड़ा कर देता है। यह किताब जितनी गहराई से मानव पाप और विनाशकारी न्याय को दिखाती है, उतनी ही ऊंचाई तक ये ईश्वरीय प्रेम और बहाली को भी ले जाती है।
क्या बात है। और ये संदेश किसी शून्य में नहीं दिया गया था। डॉक्टर ऑसवाल्ड जोर देते हैं कि हमें उस समय की भू राजनीतिक स्थिति यानी जियोपॉलिटिक्स को समझना ही होगा।
हाँ, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो मैसेज समझ में नहीं आएगा। बात हो रही है 739 ईसा पूर्व से 701 ईसा पूर्व के बीच की।
और उस समय असीरिया नाम का साम्राज्य एक उफनते हुए ज्वालामुखी की तरह था।
उफनता हुआ ज्वालामुखी बहुत सही शब्द है। असीरिया उस दौर के सबसे खूंखार लड़ाके थे। वे मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहिर थे।
मतलब वे दुनिया का सबसे बड़ा खतरा थे उस वक्त।
बिल्कुल। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य केवल छोटे देशों को जीतना नहीं था, उनका असली निशाना था मिस्र। वे चाहते थे कि मिस्र और बैबिलोन दोनों उनके मुट्ठी में हों,
ताकि पूरे विश्व व्यापार पर उनका एकाधिकार हो जाए।
एकदम सही।
अब यहाँ पर भूगोल एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। असीरिया और मिस्र के बीच 100 मील चौड़ी पट्टी थी, जिसे कनानी पट्टी कहा जाता है। मैंने जब स्रोतों में इसे पढ़ा तो मैं सोच रही थी ये तो बिल्कुल एक बेहद व्यस्त हाईवे के इकलौते टोल प्लाजा जैसा है।
टोल प्लाजा? ये बहुत ही सटीक तुलना है। अगर आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यापार करना है या अपनी सेना ले जानी है, तो आपके पास कोई और रास्ता था ही नहीं।
हाँ, और राजा सोलोमन ने इसी रास्ते को नियंत्रित करके इतना अपार धन कमाया था। तो असीरियाई सेनाओं को मिस्र तक पहुंचने के लिए इस टोल प्लाजा को तो पार करना ही था।
और इसके लिए उन्हें रास्ते पर पड़ने वाले छोटे देशों जैसे सीरिया, इसराइल और यहूदा को कुचलना जरूरी था।
और उन्होंने कुचला भी। उस समय ये देश दो हिस्सों में बटा था, उत्तर में इसराइल और दक्षिण में यहूदा।
हाँ, 722 ईसा पूर्व में असीरिया ने उत्तरी हिस्से यानी इसराइल को पूरी तरह तबाह कर दिया।
बाप रे।
और 701 ईसा पूर्व तक आते आते उन्होंने यहूदा को भी लगभग जीत लिया था, सिवाय उसकी राजधानी यरूशलम के।
आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी भयानक दमघोटू स्थिति रही होगी।
बहुत भयानक। लेकिन एक मिनट, मैं इस टाइमलाइन को देख रही हूँ और मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आ रही है।
अच्छा, वो क्या?
अगर 700 ईसा पूर्व में असीरिया उनकी गर्दन पर तलवार रखे खड़ा था, तो इस किताब के बाद वाले अध्यायों में अचानक बैबिलोन और फारस का जिक्र क्यों होने लगता है? वो साम्राज्य तो उस वक्त तक कोई बड़ा खतरा थे ही नहीं।
उन्हें तो 100-150 साल बाद आना था और यही वो सवाल है जिसने सदियों से अकादमिक दुनिया में भूचाल ला रखा है।
तो क्या इसी वजह से यशाया के लेखक को लेकर इतना बड़ा विवाद है? बिल्कुल। विद्वान इस किताब को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला अध्याय 1 से 39 जो यशाया के अपने समय का है जब असीरिया का खौफ था।
ओके।
फिर अचानक अध्याय 40 से 55 में किताब उन लोगों से बात करने लगती है जो 150 साल बाद बेबीलोन के निर्वासन में बैठे हैं।
और तीसरा हिस्सा
अध्याय 56 से 66 जो निर्वासन से वापस लौटने के बाद के दौर की बात करते हैं।
ईमानदारी से कहूँ तो आधुनिक धर्म निरपेक्ष इतिहासकारों का तर्क मुझे काफी लॉजिकल लगता है। अगर कोई किताब आज से 150 साल बाद की घटनाओं का इतना सटीक वर्णन कर रही है तो एक शोधकर्ता को तो यही मानकर चलना पड़ेगा ना कि वो घटना घटित होने के बाद लिखी गई है।
तर्क के नजरिए से ये सही लग सकता है। इसी वजह से वे मल्टीपल ऑथरशिप यानी कई लेखकों के सिद्धांत की बात करते हैं। उनका मानना है कि इसे 400 सालों तक एक समिति ने लिखा और संपादित किया।
हाँ, और ओसवाल्ड ने इस समिति वाले सिद्धांत पर जो चुटकी ली है वो मुझे कमाल की लगी। उन्होंने कहा था कि ऊंट असल में एक समिति द्वारा डिजाइन किया गया घोड़ा होता है।
हाँ। उनका मतलब है कि अगर कोई समूह 400 साल तक कोई एक किताब लिखता रहे तो वो यशाया जैसी अद्भुत साहित्यिक और सुसंगत कृति बनी नहीं सकती।
वो एक बेढंगा ऊंठी बनेगी।
राइट, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड का मुख्य तर्क केवल साहित्यिक नहीं है। वे कहते हैं कि आधुनिक अकादमिक सोच का मूल आधार ही ये है कि भविष्यवाणी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती।
मतलब वे ये मानकर चलते हैं कि कोई इंसान भविष्य नहीं देख सकता।
हाँ, इसलिए अगर कोई प्राचीन ग्रंथ भविष्य बताता है तो वो सीधे निष्कर्ष निकालते हैं कि वो पक्का बाद में लिखा गया होगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर हम मान लें कि ये किताब सच में 150 साल बाद किसी और ने यशाया के नाम से लिखी महज लोगों को सांत्वना देने के लिए,
तो क्या?
तो फिर ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक या धार्मिक धोखाधड़ी हुई ना। अगर ये घटनाओं के बाद मनगढ़ंत तरीके से लिखी गई है तो फिर इसमें ईश्वरीय सत्य कहाँ बचा? इसका तो पूरा आधार ही गिर जाता है।
यही तो डॉक्टर ओसवाल्ड समझाना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये किताब यशाया ने ही लिखी है और ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी है।
उनका मानना है कि जो ईश्वर समय और स्थान को बनाता है वो अपने नबी को भविष्य की झलक दिखा सकता है।
एकदम सही। और ये झलक या दर्शन हमें सीधा यशाया के पहले अध्याय में ले जाता है
जिसे पूरी किताब का सूक्ष्म रूप कहा गया है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि इस किताब की शुरुआत किसी संदेश से नहीं बल्कि एक दर्शन या विजन से होती है।
देखिए, संदेश और दर्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक संदेश अमूमन आपके दिमाग से बात करता है, वो तार्किक होता है,
जैसे कोई लेक्चर।
हाँ, लेकिन एक दर्शन एक तस्वीर की तरह होता है, वो आपकी भावनाओं आपकी कल्पना को जकड़ लेता है।
और यहाँ जो तस्वीर खींची गई है वो एक ब्रह्मांडीय अदालत की है, एक कॉस्मिक कोर्ट।
हाँ, जहाँ ईश्वर एक जज की कुर्सी पर बैठा है।
और वो गवाह के रूप में किसे बुलाता है?
स्वर्ग और पृथ्वी को। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? किसी इंसान या फरिश्ते को क्यों नहीं बुलाया? स्वर्ग और पृथ्वी को बुलाने का कारण ये है कि प्रकृति निष्पक्ष है, वो हमेशा ईश्वरीय नियमों का पालन करती है।
हाँ, सूरज कभी ये तय नहीं करता कि वो आज दक्षिण से उगेगा।
बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण कभी छुट्टी पर नहीं जाता। प्रकृति बगावत नहीं करती
लेकिन इंसान करता है,
और इसी इंसानी बगावत को दिखाने के लिए ईश्वर वो जानवरों वाला रूपक इस्तेमाल करता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, बैल और गधे का उदाहरण,
जहां ईश्वर कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानता।
ये एक बहुत ही गहरा तंज है। गधे को कोई बहुत बुद्धिमान जानवर नहीं माना जाता, लेकिन ओसवाल्ड समझाते हैं कि वो जानवर भी जानता है कि उसे चारा कहाँ से मिलता है,
उसे सुरक्षा कौन देता है।
लेकिन वो लोग जिन्हें ईश्वर ने खुद पाला पोसा वे अपने ही पालनहार को पहचानने से इनकार कर रहे हैं।
यहाँ हमें उस इब्रानी भाषा यानी हिब्रू के शब्दों को थोड़ा और खोलना चाहिए जो इस विद्रोह को परिभाषित करते हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में इस पर गौर किया था। प्राचीन इब्रानी में पाप के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है
और वे एक सीढ़ी की तरह है। पहला शब्द है सिन यानी पाप,
जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी लक्ष्य से चूक जाना।
बिल्कुल। चाहे आप तीरंदाजी कर रहे हो, आप सही दिशा में निशाना लगाते हैं लेकिन तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता,
तो ये एक तरह से अनजाने में की गई गलती या मानवीय कमजोरी हो सकती है।
हाँ, इसके बाद आता है दूसरा स्तर जिसे इनइक्विटी या विकृति कहा गया है, इसका मतलब लक्ष्य से चूकना नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर टेढ़ा या भ्रष्ट हो जाना है।
मतलब ये ऐसा है जैसे आपके नैतिकता के कंपास की सुई ही खराब हो गई हो।
सही कहा, आप जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि आपकी नियत ही विकृत हो चुकी है।
लेकिन इसराइल पर जो आरोप लगा था वो इन दोनों से भी आगे था। तीसरे और सबसे खतरनाक स्तर का आरोप रिबेलियन यानी हठपूर्वक विद्रोह।
विद्रोह का मतलब है हर तरह की सत्ता और सीमाओं को पूरी तरह से नकार देना।
ये लक्ष्य से चूकना नहीं है।
नहीं, ये उस कंपास को तोड़कर फेंक देना है। ये ईश्वर की आंखों में आंखें डालकर कहना है, तुम कौन होते हो मुझे नियम बताने वाले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ।
बाप रे, ये तो सीधे सीधे बगावत हुई। और इस बगावत का नतीजा क्या हुआ? दर्शन में दो बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें दिखाई गई हैं।
पहली तस्वीर एक ऐसे इंसान की है जिसे सिर से पैर तक बुरी तरह पीटा गया है, जिसके घाव खुले हैं और कोई मरहम पट्टी नहीं है।
और दूसरी तस्वीर सर्दियों के मौसम में ककड़ी के खेत में खड़ी एक जर्जर झोपड़ी। ये रूपक मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, लेकिन शायद आज के शहरी लोगों को ये तुरंत समझ ना आए।
उस समय के कृषि प्रधान समाज के लिए बहुत ही जीता जागता दृश्य था। फसल की कटाई के दौरान किसान अपने खेतों के बीच में एक अस्थायी झोपड़ी बनाते थे
ताकि वे वहीं रहकर काम कर सकें।
हाँ, उस समय वहाँ जीवन होता था, चहल पहल होती थी। लेकिन
जब कटाई खत्म हो जाती है और सर्दियां आती हैं तो किसान उस झोपड़ी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं
और वो ढांचा हवा और बारिश में सड़ता रहता है।
वो बिल्कुल वीरान और दयनीय हो जाता है। ये मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े त्योहार या मेले के बाद छोड़ा गया कोई खाली फटा हुआ टेंट हो।
बहुत अच्छी तुलना है।
जहाँ एक दिन पहले तक रोशनी और जीवन था, वहाँ अब सिर्फ एक अजीब सा वीरानपन रह जाता है। इसराइल की हालत वैसी ही खोखली हो गई थी।
अब यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है। जब लोग इतने गहरे पतन और वीरानपन का सामना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या किया?
क्या उन्होंने अपनी गलतियाँ मानी?
बिल्कुल नहीं, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों, चढ़ावों और अनुष्ठानों की झड़ी लगा दी।
मैं यहीं पर थोड़ा उलझ गई थी। लोग जानवर कुर्बान कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, धूप जला रहे थे, और ये सब तो वही तरीके थे जो खुद ईश्वर ने उन्हें सदियों पहले सिखाए थे, राइट?
हाँ, बिल्कुल।
तो ईश्वर को अचानक इन सबसे इतनी नफरत क्यों हो गई? ईश्वर कहता है कि वो इन सभाओं से तंग आ चुका है।
क्योंकि ईश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि वो विकृति और पवित्र सभा को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके हाथ खून और भ्रष्टाचार से सने थे
और वे मंदिर में आकर पवित्रता का नाटक कर रहे थे।
वही तो।
मतलब आप सप्ताह के छह दिन कमजोरों का शोषण करें, रिश्वत लें और सातवें दिन आकर सबसे आगे की लाइन में खड़े होकर धार्मिक भजन गाएं।
और मजे की बात यह है कि प्राचीन मूर्ति पूजक दुनिया में ये सब चलता था।
अच्छा, कैसे?
यहाँ हमें पवित्र या होली शब्द के उस समय के अर्थ को समझना होगा। उस दौर में असीरिया या मिस्र के देवताओं के लिए पवित्र होने का मतलब नैतिकता नहीं था।
हाँ, जैसे अगर हम ग्रीक देवताओं को देखें तो वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे आपस में लड़ते थे, ईर्ष्या करते थे
और इंसानों की तरह ही अनैतिक हो सकते थे। उनके लिए पवित्रता का मतलब सिर्फ ताकतवर होना या इंसानों से अलग होना था।
लेकिन यशाया के ईश्वर का स्वरूप बिल्कुल अलग था।
एकदम अलग। यशाया में ईश्वर को इसराइल का पवित्र ईश्वर कहा गया है। यहाँ पवित्रता का मतलब महज शक्ति नहीं है बल्कि पूर्ण नैतिकता है।
उसका चरित्र प्रेम, न्याय, सत्य और करुणा से बुना हुआ है।
हाँ, और इसलिए वो ऐसे अनुष्ठानों को स्वीकार नहीं कर सकता जो एक अनैतिक जीवन को ढकने के लिए किए जा रहे हों।
तो फिर सच्चा समाधान क्या है?
सच्चा समाधान धार्मिक दिखावा नहीं है।
नहीं,
सच्चा समाधान है बुराई छोड़ना, अनाथों को न्याय दिलाना और विधवाओं के हक के लिए लड़ना।
मतलब ईश्वर को आपके कर्मकांडों की नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर लोगों के प्रति आपकी करुणा की परवाह है।
बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जब लोग नहीं सुधरते तो कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है,
आयत 24, जहां ईश्वर घोषणा करता है कि वह अपने दुश्मनों पर हाथ उठाएगा और अपना गुस्सा निकालेगा।
और डरावनी बात यह है कि यहाँ उसके दुश्मन असीरिया या मिस्र के लोग नहीं है,
उसके दुश्मन खुद उसके अपने ही बागी लोग हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो लगा कि लो, अब तो बस सब खत्म, ईश्वर उन्हें पूरी तरह मिटा देगा।
लेकिन अगली ही आयत यानी आयत 25 पूरी तस्वीर को पलट देती है। ईश्वर बताता है कि वो हाथ उठाएगा लेकिन विनाश के लिए नहीं
बल्कि शुद्धिकरण के लिए। यहाँ एक बहुत ही सुंदर धातु कर्म का रूपक इस्तेमाल हुआ है,
स्मेल्टिंग प्रोसेस, राइट?
हाँ, जैसे चांदी को बहुत तेज आंच वाली भट्टी में डाला जाता है ताकि उसमें से सारी अशुद्धियां और मैल जलकर खाक हो जाए और सिर्फ शुद्ध चांदी बचे।
और ये दर्दनाक होता है। आग जलाती है, लेकिन उस आग का मकसद धातु को नष्ट करना नहीं होता, उसे निखारना होता है।
ये मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे एक सर्जन शरीर को बचाने के लिए उसमें चीरा लगाता है।
बहुत उम्दा रूपक है ये। सर्जन का चीरा लगाना कोई सजा नहीं है।
खून बहता है, दर्द भी होता है, लेकिन वो चीरा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उस ट्यूमर या सड़न को काटकर शरीर से बाहर निकाला जा सके।
और यशाया के मामले में वो ट्यूमर उनका खोखला धार्मिक पाखंड और सामाजिक अन्याय था।
ये नजरिया हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी के मुश्किल और दर्दनाक समय को एक सजा की तरह देखते हैं।
हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज हैं।
लेकिन यशाया ये तर्क दे रहा है कि शायद वो मुश्किल समय एक रिफाइनिंग फायर है, एक शुद्ध करने वाली आग।
हाँ, क्योंकि न्याय कभी भी ईश्वर का अंतिम शब्द नहीं होता, ये बहाली और छुटकारे का रास्ता है।
और ईश्वर ये वादा करता है कि वफादार शहर जो वेश्या बन गया था वो फिर से वफादार शहर कहलाएगा।
वे फिर से न्याय का केंद्र बनेंगे। और देखिए, अध्याय के अंत में पेड़ों या बांझ वृक्षों का एक और रूपक आता है।
वो पेड़ जिनकी प्राचीन मध्य पूर्व में मूर्ति पूजा के रूप में पूजा की जाती थी।
हाँ, लोग अपनी ताकत और स्थिरता दिखाने के लिए इन पेड़ों की पूजा करते थे। यशाया कहता है कि मानव के घमंड और मूर्ति पूजा के ये प्रतीक सूख जाएंगे,
उनके पत्ते झड़ जाएंगे।
लेकिन जो लोग टूटकर सच्चे दिल से ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर उन्हें फिर से एक नया और मजबूत पेड़ बनाएगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है जो अपने आप हो जाएगी।
बिल्कुल नहीं।
शुद्धिकरण और बहाली के ये सारे वादे केवल तभी काम आएंगे जब लोग सच में पश्चाताप करेंगे। अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो वह विनाश की आग उन्हें भस्म कर देगी।
चुनाव आखिरकार मनुष्यों को ही करना है। ईश्वर का अनुग्रह अनंत है, लेकिन वो किसी को भी उनके कर्मों की जिम्मेदारी से आजाद नहीं करता।
तो आज के इस चर्चा में हमने वाकई एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। हमने असीरियाई साम्राज्य के उस भयानक दबाव को महसूस किया
जहाँ से ये ग्रंथ उपजा।
हाँ, और हमने उस अकादमिक विवाद पर चर्चा की कि कैसे केवल घटनाओं के बाद लिखी गई एक किताब ईश्वरीय सत्ता का दावा नहीं कर सकती।
हमने उस ब्रह्मांडीय अदालत को भी देखा जहां प्रकृति को गवाह बनाया गया,
और समझा कि ईश्वर को महज शक्ति वाले अनुष्ठानों से नहीं बल्कि सच्ची नैतिकता और न्याय से प्रेम है।
इस पूरे अध्ययन का निचोड़ यही है कि कोई भी कर्मकांड, कोई भी धार्मिक आवरण अगर भीतर ही से सच्चाई और करुणा से जुड़ा नहीं है तो वो ईश्वर की नजरों में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
और यही वो बिंदु है जो इस प्राचीन ग्रंथ को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन काल के लोग कितने नासमझ थे जो खोखले कर्मकांडों में फंसे रहे।
सही बात है।
लेकिन जरा आज के हमारे आधुनिक समाज को देखिए। आज हम मंदिरों में शायद उतने बैल कुर्बान न करते हों, लेकिन क्या हम सोशल मीडिया पर अपनी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करते,
जिसे आजकल परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म या दिखावटी सक्रियता कहा जाता है?
हाँ, हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर का रंग बदल लेते हैं, एक हैशटैग शेयर कर देते हैं,
या बिना किसी वास्तविक जमीनी बदलाव के बस सतही चैरिटी करके दिखावा करते हैं,
और हम सोचते हैं कि हमने अपना नैतिक फर्ज पूरा कर लिया। क्या हमारी ये डिजिटल दुनिया की सतही नैतिकता, हमारी ये दिखावटी हमदर्दी उसी पवित्र लेकिन खोखली सभा का आधुनिक रूप नहीं है जिससे यशाया के ईश्वर ने नफरत की थी?
ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है।
अगर यशाया आज के दौर में होते तो हमारी किन दिखावटी प्रथाओं को देखकर हमें ककड़ी के खेत की जर्जर झोपड़ी कहते? हम भले ही दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने के लिए अपनी जिंदगी को कितना भी एडिट कर लें,
कितने भी अच्छे फिल्टर लगा लें,
लेकिन क्या वो ईश्वरीय दृष्टि हमारे उस खोखलेपन को नहीं देख रही होगी?
बिल्कुल।
अगली बार जब हम दुनिया को अपनी अच्छाई या सक्रियता दिखाने की कोशिश करें तो हमें रुककर खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये सचमुच दिल से उठी करुणा है या महज हमारे दौर का एक नया आधुनिक कर्मकांड?
ये सचमुच विचार करने लायक बात है।
तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले बार एक नई खोज और एक नए नजरिए के साथ।